ஹரே கிருஷ்ணா. ஆப் சப் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜானதே ஹேன், ஹா? மேரே சாத் போலியே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. யே ஹே மகாமந்திர, பகவான் கே நாம் கே த்வாரா ஜிஸ் மந்திர கா ரச்சனா ஹோதா ஹே வோ ஹே மகாமந்திர. வேத மே பஹுத் சாரே மந்திர ஹே, பரந்து மகாமந்திர கேவல் ஏக் ஹி ஹே. மந்திர கா உத்தேஷ் க்யா ஹே? மந்திர கா மந்திர சே ஹம் க்யா ப்ராப்த ஹோதே ஹே? ஓகே, பகவான் கோ மந்திர சே ஹம், மந்திர சே மன் கா த்ரான் ஹோதா ஹே. தோ சாரே ஜோ மந்திர ஹே வோ மந்திர கோ த்ரான் கர்த்தா ஹே, மந்திர கோ மன் கோ உத்தார் கர்த்தா ஹே. இஸ்லியே மனங் த்ராயதே இதி மந்திர. மன் கோ ஜோ த்ரான் கர்த்தா ஹே, மன் கோ ஜோ உத்தார் கர்த்தா ஹே வோ ஹே மந்திர. ஔர் மஹா கா உத்தேஷ் க்யா ஹே? மஹா கா மத்லப் க்யா ஹோதா ஹே? மஹா கா மத்லப் சப்சே ஸ்ரேஷ்ட. தோ சாரே மந்திரோ மே சே ஜோ सबसे श्रेष्ठ है वो है महामंत्र. ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. साधारणतया मंत्रों को जपा जाता है. जप मतलब ये मंत्र पर जो ध्यान होता है उसको जप कहा जाता है. बल्कि महामंत्र को जप और कीर्तन दो ही होता है. हम तो अकेला एकांत में बैठकर जप कर सकते हैं மந்திர கோ, ஹம் சப் இக்கட்டா ஹோகர் மகாமந்திர கோ கீர்த்தன் பி கர்த்தே ஹே. தோ ஹம் ஜப் ஆப் இக்கட்டா ஹுயே ஹே தோ ஹம்கோ க்யா கர்னா சாஹியே? ஹா, மகாமந்திர கோ கீர்த்தன் கர்னா சாஹியே. ஔர் ஜப் ஆப் கியே ஹே ஆஜ், ஹா? ஔர் கோன் கோன் ஜப் கர்த்தே ஹே ஹர் ரோஜ் நியமித ரூப் மே? பகுத் அச்சா, பகுத் அச்சா, வெரி குட், வெரி குட். ஜோ ஆப் ஜப் கர் ரஹே ஹே உஸ்ஸே குச் சுஃபல் மில் ரஹா ஹே, குச் ஃபாயதா ஹோ ரஹா ஹே, ஹா? பகுத் அச்சா. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சுக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமைஹம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார் ஸ்ரீபாஷாதி கௌர பக்த விருந்த, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி. ஹரே கிருஷ்ணா. आज का आलोचना का विषय है, आज का चर्चा का विषय है श्री रामचंद्र के शिक्षा। श्री रामचंद्र कौन है? रामचंद्र है स्वयं भगवान। भगवान क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में? भगवान गीता में वर्णन किए हैं कि जब धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब धर्म को पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब है आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आना, अवतरण। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो उसे अवतरण कहता है। भगवान वहां से यहां आते हैं। भगवान नित्य है, ऐसा नहीं कि जब से रामचंद्र इस भौतिक जगत में आए थे तभी उनका उत्पत्ति हुआ था, उनका जन्म हुआ था, नहीं। भगवान नित्य है। नित्य का मतलब भगवान सदैव हैं, पर भौतिक जगत में भगवान कभी कभी आते हैं और कभी कभी यहां से चले जाते हैं। जब आते हैं तब उनको प्रकट लीला कहा जाता है। प्रकट का मतलब भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। वैसे भगवान हमारे आंखों के सामने विराजमान नहीं है। हम और आप जैसे एक दूसरे को देख सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वैसे भगवान भी कभी कभी हमारे सामने वैसे प्रकट होकर हमको उनके साथ बातें करने का, उनके साथ चर्चा करने का, उनके साथ हार्दिक लेन देन करने का अवसर देते हैं। जब ये अवसर देते, जब ऐसे भगवान प्रकाश होते हैं हमारे सामने इस भौतिक जगत में, उस स्थिति को प्रकट कहा जाता है। और जब भगवान चले जाते हैं तो उस अवस्था को अप्रकट कहा जाता है। भगवान प्रकाश होते हैं और भगवान यहां से चले जाते हैं। तो वैसे भगवान के बहुत सारे लीलाएं हैं, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, और यहां अवतरण करके भगवान अपना लीला विलास करते हैं। लीला का मतलब क्या है? लीला का मतलब है भगवान ऐसे आचरण करते हैं कि हमें मालूम होता है कि ऐसा लगता कि वो सच है, वो सत्य है, वो सही हो रहा है। जैसे मंच पर जब कोई नाटक होता है, नाटक देखते समय कैसा लगता है वो सच हो रहा है, परंतु नाटक जब खत्म हो जाता है तब देखते हैं हम अभिनेता और अभिनेत्री सब दूसरे आदमी हैं। जो नाटक कर रहा था, जैसे राजा, कोई राजा था, कोई रानी था, कोई सेनापति था, कोई दुश्मन था, पर नाटक खत्म होने के बाद हम क्या देखते हैं? वो जो अभिनेता और अभिनेत्री एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह आचरण कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान यहां प्रकट होकर अपने साथियों को लेकर यहां आकर ऐसे अभिनय करते हैं, उस अभिनय को लीला कहा जाता है। और इस लीला के माध्यम भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें कुछ शिक्षा देते हैं। तो वैसे श्री रामचंद्र के रूप में आकर भगवान हमें क्या शिक्षा दिया, हमें शिक्षा दिया कि धर्म के मार्ग में कैसे रहना चाहिए, धर्म के मार्ग में कैसे रहकर आध्यात्मिक उन्नति साधन करना चाहिए, इसका दृष्टांत भगवान दिए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के रामचंद्र का जो ये है रामायण है ये कोई कहानी है। कहानी और इतिहास में क्या अंतर है, कहानी मन का बनावट है, पर इतिहास, आप इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं स्कूल में, इतिहास क्या है, राजाओं ने जैसे कार्य किए थे पूरा काल में उनका वर्णन, वैसे ही रामायण कोई कहानी नहीं है। कोई सोचता है कि रामायण एक नॉवल है, भारत में कब से एक आदमी लोग रामायण को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, बल्कि कभी क्या सोचता है कि रामायण एक काल्पनिक नॉवल है, उपन्यास सोचते, नहीं, सबको पता है कि रामायण श्री रामचंद्र का कार्यकलाप का या लीला का वर्णन है। और रामचंद्र कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, श्री रामचंद्र एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है, वो है स्वयं भगवान। भगवान आकर यहां लीला विलास किए थे। भगवान कौन सी वंश में आए थे श्री रामचंद्र के रूप में, सूर्य वंश में, सूर्य वंश में आए थे। सूर्य वंश का मतलब सूर्य देव से जिस वंश का उत्पत्ति हुआ है वो है सूर्य वंश। सूर्य देव कौन है, सूर्य देव है विवश्वान। सूर्य देव एक व्यक्ति है, वो सूर्य लोक सूर्य मंडल का अधिपति है, सूर्य मंडल का राजा है, वो है सूर्य देव। तो इस समय का इस स्थिति में, मतलब इस मन्नंतर में सूर्य देव है विवश्वान। विवश्वान का पुत्र है वैवश्यत मनु, मनु, और मनु का पुत्र था इक्ष्वाकु। रामचंद्र ने इस वंश में, इस सूर्य वंश में प्रकट हुए थे, जिस सूर्य वंश में इक्ष्वाकु के नाम पर इस वंश का नाम हुआ इक्ष्वाकु वंश। रामचंद्र का जन्म कौन से वंश में हुआ था, इक्ष्वाकु वंश में। और इस इक्ष्वाकु वंश में बहुत सारे मशहूर राजर्षि का उत्पत्ति हुआ था, जन्म हुआ था। राजर्षि कौन है, राजर्षि का मतलब क्या है, जो राजा है परंतु असल में ऋषि है। ऋषि मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्ति। हम सोचते हैं ऋषियों ने तपोवन में रहते हैं या कोई पर्वत में रहते हैं, परंतु ये एक प्रकार के ऋषि हैं जो राजा हो बनकर प्रजा लोगों को पालन करते थे और मार्ग दिखाते थे। तो ऐसी वंश में श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, रामचंद्र का आविर्भाव हुआ, जन्म नहीं, भगवान गीता में बताए हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। दिव्य मतलब साधारण नहीं है, साधारण मनुष्य का जन्म जैसा होता है, श्री रामचंद्र का जन्म वैसा नहीं हुआ। यद्यपि श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था दशरथ की पुत्र के रूप में, और रामचंद्र के माता थे कौशल्या, दशरथ का तीन पत्नी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। पर पुत्रेष्ट यज्ञ करके उनका ये चार पुत्र मिला, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चार पुत्र थे चतुर्भुह, भगवान का वैकुंठ में चार प्रकाश हैं, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव श्री रामचंद्र के रूप में आए हैं, शंकरशन लक्ष्मण के रूप में, भरत और शत्रुघ्न थे प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। श्री रामचंद्र थे मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सारे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने के कारण भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में वर्णन किया जाता है। श्री रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आकर भगवान मर्यादा का शिक्षा दिया। भगवान ऐसे लीला विलास किए थे ताकि हम सबको पता चल सकता है कि कैसे हमको आचरण करना चाहिए। एक बहुत सुंदर शिक्षा भगवान इस लीला में आकर प्रदान किए हैं। श्री रामचंद्र का बाल्यावस्था में बहुत सारे सद्गुण का विकास उनमें दिखाई दिया था और बहुत क्षत्रिय के होने के कारण वो बहुत शक्तिशाली प्रभावशाली राजपुत्र के रूप में उन्होंने लीला विलास कर रहे थे। एक समय विश्वामित्र ने एक बहुत बड़े ऋषि रामचंद्र के पिताजी दशरथ के पास आकर बताया कि कुछ राक्षस ने उपद्रव कर रहा था तो उनको संहार करने के लिए उनको पुत्र को मांगा था। उस समय रामचंद्र का उम्र लगभग 14 साल को था, तो दशरथ ने सोचा ये बच्चा जाके क्या कैसे ऐसे राक्षसों को साथ लड़ाई करेंगे, शायद ये राक्षसों ने मेरे पुत्र का हत्या कर लेगा, संहार कर लेगा, मार डालेगा। क्योंकि दशरथ वात्सल्य रस के कारण सोचते थे कि रामचंद्र उनका पुत्र है, उन्होंने उनको ऐसी भावना नहीं था कि रामचंद्र श्री भगवान है। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा देवी की, जय श्री श्री गौनिताय की। ऐसी भावना स्वाभाविक है, यद्यपि रामचंद्र भगवान हैं, परंतु चूंकि उन्होंने दशरथ के पुत्र के रूप में आए थे, तो दशरथ को मनभाव ऐसा था कि ये मेरा पुत्र है। भगवान के रूप में उन्होंने रामचंद्र को दर्शन नहीं करते थे, परंतु विश्वामित्र को पता था कि ये स्वयं भगवान है। इसलिए विश्वामित्र ने सोचा कि ये राक्षसों को संहार केवल भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आकर रामचंद्र को मांगा। तब दशरथ ने बोला, ये तो बच्चा है, ये कैसे राक्षसों के साथ लड़ाई करेगा, चलिए मैं चलता हूं, मैं राक्षसों के साथ लड़ाई करके उनको संहार करूंगा। पर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर उनको बताया, देखो मैं जो बोल रहा हूं वो तुम क्यों नहीं सुन रहे हो, मैं तुमको नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारा लड़का को चाहता हूं, क्योंकि मुझे भली भांति पता है कि इस राक्षसों को संहार यही कर सकता है। विश्वामित्र ने यद्यपि जानते थे कि श्री रामचंद्र भगवान हैं, परंतु उन्होंने दशरथ को नहीं बताया। तब ये विश्वामित्र का क्रोधित होते हुए देखकर दशरथ ने थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि ऋषियों का जब क्रोध होता है तो साप दे देते हैं। तो उन्होंने रामचंद्र को विश्वामित्र के साथ भेजने को स्वीकार कर लिया। और राम और लक्ष्मण दोनों ने बहुत बहुत निकट संपर्क था दोनों में, तो एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते थे। तब रामचंद्र ने, लक्ष्मण भी बोला, मैं भी चलूंगा मेरे भाई के साथ। तो राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र ने गए थे, और वहां जहां उनका आश्रम था, और जाते समय विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र को दिव्यास्त्र और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। ये भी एक लीला है, जैसे श्री कृष्ण भगवान यहां इस अवंतीपुर में आकर सांदीपनि मुनि के आश्रम में पाठ लिए थे। लोग कह सकते हैं कि भगवान को पाठ लेने का क्या जरूरत है। हाँ, भगवान का पाठ लेने का कोई जरूरत नहीं है, पर लीला विलास करने के लिए भगवान कभी कभी ऐसे करते हैं। भक्तों के साथ भगवान का जो गहरा प्यार का संपर्क होता है, उस प्रेम के कारण उन्होंने कभी कभी अपने भक्तों को बड़े बना देते हैं, गुरु बना देते हैं। तो वैसे ही जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर पाठ ग्रहण किए थे, वैसे ही रामचंद्र ने विश्वामित्र के पास दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और दिव्यास्त्र, दिव्य अस्त्र भी प्राप्त हुआ, और तारका, मारीच आदि राक्षसों को संहार करके रामचंद्र ने विश्वामित्र का आश्रम को आश्रम में शांति स्थापन किया। तब विश्वामित्र को ये, विश्वामित्र ने देखा कि उनको पता था कि लक्ष्मी देवी भी इस धरती पर आ गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब लक्ष्मी देवी के साथ श्री राम भगवान को मिलन होना चाहिए। तब राक्षसों के संहार के बाद विश्वामित्र ने रामचंद्र को और लक्ष्मण को ले गए थे जनकराज के आश्रम में, जनकराज के प्रासाद में, जहां सीता देवी प्रकट हुए थे। जनक राज महाराज जनक मिथिला का राजा थे, मिथिला धीश जनक राज का पुत्री के रूप में सीता देवी का आविर्भाव हुआ। सीता देवी का वैसे जन्म नहीं हुआ था, जनक राज को ऐसे जग्गस्थली में सीता देवी को प्राप्त हुआ था। बचपन में जनक राज के प्रासाद में हर धनु था, शिवजी का धनुष। जो शिवजी का जो धनुष है उसको कोई उठाना नहीं सकता है। शिवजी का धनुष और साधारण कोई व्यक्ति उठाना नहीं सकता है। बल्कि जब सीता देवी बच्ची थी तब एक दिन सब आश्चर्य होकर देखा कि सीता देवी ने उस धनुष पर चढ़कर जैसे घोड़ा चढ़ते हैं बच्चे लोग वैसे चल रहे हैं। तो सब ताज्जब बन गया। जिसको उठाने के लिए 100 आदमी को जरूरत होता था, वो सिर्फ धनुष को उठाने के 100 पहलवान को जरूरत होता था। 100 पहलवान भी उठाना नहीं सकता उस धनुष को। सीता देवी बचपन अवस्था में ही उठा लिया। तो सबको पता चला कि ये सीता देवी कोई साधारण लड़की नहीं है, शिवजी का धनुष उठाने वाले और किसी के लिए संभव नहीं है। तब जनक राज को ऐसा मालूम हुआ कि सीता देवी को विवाह भगवान के साथ ही होना चाहिए और किसी के साथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वयं लक्ष्मी देवी है। इसलिए जनक राज ने एक संकल्प किए थे कि सीता देवी के विवाह उनके साथ होगा जो इस हर धनु में छीला लगा सकेंगे। तो उस समय सीता का स्वयंवरा हो रहा था। स्वयंवर का मतलब है स्वयं अपने पति को ढूंढ लेना और चुन लेना। वैदिक समाज में क्षत्रिय राज कन्या का अधिकार था स्वयं अपने पति को चुनना, और इस चुनने में शर्त ये था कि जो इस हर धनु को बेंट करके उसमें जो छीला होता है धनुष का वो लगा सकेगा, उसके साथ ही सीता देवी का विवाह होगा। तो ये संवाद जब सारे और फैल गया, जगह जगह से बहुत सारे राजाओं और राजकुमार ने आया, परंतु किसी ने भी इस हर धनु में छीला लगाना नहीं सका। बल्कि जब रामचंद्र आया तो विश्वामित्र ने उनको लाया था, तो जनक राज बहुत सम्मान के साथ उनको आसन दिया और हर धनु को वहां बुलाया गया, लाया गया, और रामचंद्र केवल उस धनुष उठाकर उसमें छीला ही नहीं लगाया बल्कि उस धनुष को तोड़ दिया, हर धनु को तोड़ दिए थे। तब इस प्रकार ऐसे रामचंद्र का साथ सीता देवी का विवाह हुआ। परंतु इसके पश्चात ये भगवान का लीला एक दूसरा और इसको गति दूसरा मोड़ ले लिया। रामचंद्र ने जब अयोध्या में आया, वापस आया, तब सारे नगरी बहुत उत्फुल्ल हो उठा, बहुत उत्सव मना रहे थे। और दशरथ ने रामचंद्र को युवराज के पद में अभिषिक्त करने वाला थे, करने वाले थे, परंतु उस समय जब सारे शहर, सारे नगरी इस महोत्सव में मगन थे, तो उस समय कैकेयी, दशरथ के और एक पत्नी, भी उस उत्सव में मगन हो गए थे, परंतु उनका एक दासी थी जो थी कुब्जा, कुब्जा कूज वाला, मंथरा का केवल शरीर ही वैसे टेढ़ा हुआ नहीं था, उसका मनोभाव भी बहुत ही कुटिल था, बहुत ही टेढ़ा था। तो मंथरा ने कैकेयी को बताया, देखो तुम अब इस उत्सव में मगन होकर मजा लूट रही हो, परंतु तुमको पता नहीं है तुमको क्या होने को जा रहा है। जब रामचंद्र राजा बनेगा तो सारे लोग कैकेयी को, रामचंद्र के माता को ही सम्मान करेंगे और तुमको कोई सम्मान नहीं करेंगे, तुम उनका दासी जैसे बनके रहोगी। ऐसे मंथरा ने कैकेयी को कुमंत्रणा देने लगी और उस कुमंत्रणा के प्रभाव से कैकेयी का मनभाव, यद्यपि रामचंद्र के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण था, वो बदल गया। तो कैकेयी ने बताया, तो मैं क्या करूं, कैसे इस परिस्थिति को मैं परिवर्तन कर सकूंगा। तब मंथरा ने बताया, कोई फिक्र मत करो, एक उपाय है। जब दशरथ ने स्वर्गलोक में देवता के साथ, असुरों के, देवता के पक्ष लेकर असुरों के साथ लड़ाई कर रहा था, तब वो दशरथ जब आहत हो गया था, आघात चोट लगा था, बेहोश हो गया था, तब तुमने उनको बहुत सेवा किया। तो उस समय दशरथ तुमको बताया कि वो दो बर देने के लिए तैयार थे, बल्कि तुम उस समय बताया, आप तो हमको सब कुछ दे चुके हैं, हमको आज चाहना क्या है, मैं आपसे क्या मांगू, आप तो ऐसे ही हमको सब कुछ दे चुके हैं, तो इसलिए तुम उस समय उस बर नहीं ग्रहण किया। पर दशरथ तुमको बताया था कि भविष्य में कभी अगर तुमको कुछ चाहना होगा तो तुम इस बर मांग सकती हो, अब समय आया है उस बर मांगने के लिए। दो बर देने वाला था दशरथ तुमको, तो एक बर से तुम ये मांगो कि भरत राजा बनेगा, भरत को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाना है, और दूसरा वर्ष से रामचंद्र को 14 साल के लिए वन में भेज दो। तो कैकेयी का ये बहुत पसंद आया, तो कैकेयी अपना घर का दरवाजा बंद करके अपना सारे जेवर उतार कर मिट्टी में सोकर रोने लगी। जब दशरथ आया देखा ऐसे कैकेयी रो रही हैं, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ कैकेयी। तब कैकेयी बताया आपसे कुछ मांगना है, याद है आप दो बर देने के लिए तैयार थे, तो अब मैं दो बर आपसे मांगूंगा। एक बर से हम चाहता हूं कि एक बर के कारण आप भरत को, मेरा पुत्र भरत को राज सिंहासन में बैठाइए और 14 साल के लिए रामचंद्र को वन में भेज दीजिए। दशरथ का मन में इतना चोट लगा, बोला पूछने लगा कैकेयी तुम ये, वो सुनते ही दशरथ पहले सोचा शायद कैकेयी तंग कर रही थी, मजाक कर रही थी, बल्कि जब देखा कि कैकेयी सच ये मांग रही है तो दशरथ का चेतना खो गया, वो अचेतन हो गया। और बाद में अपना घर में जाकर वो बहुत विमर्श होकर बैठा रहा। रामचंद्र ने अपने पिता को ढूंढते हुए उनके कमरा में आकर पूछा, देखा कि बैठे हैं, तो पूछा क्या हुआ पिताजी। कुछ बताया नहीं दशरथ ने, पर रामचंद्र को पता चला। कैकेयी ने आकर रामचंद्र को बताया, तब रामचंद्र अपना पिता का प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए बनवासी बनने का तैयार हो गए थे, और उनके साथ भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता देवी भी गए। ऐसे रामचंद्र ने अपना बाल्यावस्था बचपन से ही कैसे शिक्षा देने शुरू किया, जो सही काम है वो करना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी कष्ट ना हो, अपना कर्तव्य से कभी विचलित ना होना। रामचंद्र ने वनवासी बन गए, जो कल राजा बनने वाला था वो आज वनवासी बन गए। ऐसा ही सुंदर है, ऐसा ही अद्भुत है भगवान का लीला। जैसे मैं कह रहा था कि लीला मंच पर एक नाटक जैसा है, उसे नाटक से क्या होता है, अच्छा नाटक से क्या होता है, बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है। अच्छा नाटक जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, कुछ शिक्षा देना। और वो शिक्षा कैसे हमें देते हैं नाटक के माध्यम, हमारा मन भाव को बहुत गहरा रूप से प्रभावित करके वो शिक्षा देते हैं। हमारा जो इमोशंस हैं, हमारा जो अनुभूति है, इमोशंस जो हैं, मन का जो गहरा अनुभूति है, उसको प्रभावित करके ये शिक्षा देता है। अगर मन में अगर रेखापात अगर नहीं होता तो वो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं नहीं। जितना गहरा रेखा और जितना गहरा इन्फ्लुएंस होगा मन में, जिसका जितना गहरा रूप से हमको मन को प्रभावित करता है, उतना ही गहरा रूप से वो शिक्षा मिलता है। इसलिए श्री रामचंद्र का जो लीला है ये बहुत करुण है। करुण का मतलब जिस लीला दर्शन करके हमारा मन में कष्ट होता है, दुख होता है, हम रोने लगते हैं, और भगवान ऐसे लीला करते हैं कि जब हम ये लीला देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सच है, ये हो रहा है। तब हम भूल जाते हैं कि रामचंद्र भगवान हैं और वो लीला कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हाँ कि रामचंद्र एक व्यक्ति है जो हमारा बहुत नजदीक है और उनका इतना कष्ट हो रहा है और उनकी कष्ट के कारण हमारा मनोभाव भी प्रभावित हो जाता है। तो वैसे भगवान श्री रामचंद्र लीला विलास किए थे त्रेता युग में। वनवास में जाने के बाद भी कितना परेशानी हुआ उनका। राक्षस रावण ने सीता देवी को चुरा कर ले गया। इस घटना भी बहुत करुण है। रामचंद्र जब तारका को मारने को गया, तारका राक्षसी विश्वामित्र का अनुरोध पर, तब तारका का पुत्र मारीच भी आक्रमण किया था और एक बाण निक्षेप करके एक बाण से रामचंद्र ने मारीच को नहीं मारा परंतु 3000 योजन दूर समुद्र के बीच फेंक दिया। और वो मारीची को जादू विद्या बहुत जादू विद्या में बहुत भी ये थे, एक्सपर्ट थे। तो इस समय एक ऐसा हुआ, रावण का बहन शूर्पनखा को लक्ष्मण ने उसको नाक और कान काट दिया था। शूर्पनखा जब राक्षसी रामचंद्र को वन में देखकर वो चाहा कि रामचंद्र को पति के रूप में प्राप्त होने के लिए, तो रामचंद्र ने तब शूर्पनखा जब आके बताया, एक बहुत सुंदर रमणी के रूप में आए और बताया कि उन्होंने शादी कर या उनको ब्याह करना चाहते हैं, तो राम बोला, देखो मेरा तो एक पत्नी है, मेरा भाई का पत्नी नहीं है, तुम मेरे भाई के पास जाओ। तो ऐसे मजाक करने लगा। तो शूर्पनखा तब सीता को खाने के लिए गया, सोचा कि इसके लिए मेरा इतना परेशानी हो रहा है। तब लक्ष्मण अपना तलवार निकालकर शूर्पनखा को नाक और कान काट दिया। तो शूर्पनखा ने रावण के पास जाकर बताया, उसको पता था कि रावण ऐसे कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए वो बताया, देखो वो रामचंद्र के साथ उसका जो पत्नी है वो बहुत श्रेष्ठ सुंदरी है, उसको देखकर तुम बिल्कुल मोहित हो जाओगे, तो तुम अगर उसको चुरा कर ले जाओगे तो उसके अभाव से राम का उस मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा। तब रावण ने गया रामचंद्र के पास, वहां गया। जब मारीची को वो एक माया मृग के रूप, स्वर्ण मृग के रूप ग्रहण करके मारीची को भेजा था। मारीची पहले जाने को नहीं चाहा, बोला, बताया भी रामचंद्र रावण को, देखो मैं तो गया था, हमको इस रावण ने मारा नहीं, पर हमको एक बाण से वो 3000 योजन दूर हमको भेज दिया, फेंक दिया था, तो अब अगर जाएगा तो मेरा जरूर मृत्यु होगा। तब रावण ने बताया, देखो अगर तुम्हारा मृत्यु उसके साथ होगा, नहीं तो तुम अगर नहीं जाओगे तो मेरे हाथ में तुम्हारा मृत्यु होगा, तो तुम अब विचार करो तो किसका हाथ में तुम्हारा मृत्यु हो तुम चाहते हो। तो मारीची सोचा कि जब मरना होगा या तो रावण के हाथ में मरूंगा नहीं तो रामचंद्र के हाथ में मरूंगा। तो चलो रावण रावण से अच्छा होगा कि मैं रामचंद्र के हाथ में ही मेरा मृत्यु हो। तो मारीचि तब एक स्वर्ण मृग के रूप में गया। सीता ने देखा एक स्वर्ण मृग, तो राम को बोला, राम तुम ये हरिन ये हिरन हमको चाहिए। रामचंद्र ने बताया, देखो ये हिरन तो कभी सोना का नहीं होता है, ये कोई मायावी का छल होगा। बल्कि सीता ने बोला, नहीं हमको यह हिरन चाहिए। तब रामचंद्र बोला, ठीक है मैं जाता हूं, पर लक्ष्मण को मैं छोड़ के जाता हूं ताकि लक्ष्मण तुमको रक्षा करेंगे। तब रामचंद्र वो हिरन के पीछे जाकर हिरन को मारा बाण के द्वारा। तो मरते समय इस मायावी ने मारीचि ने रामचंद्र के स्वर को अनुकरण करके लक्ष्मण को बुलाने लगा, भाई लक्ष्मण रक्षा करो, कहाँ हो तुम, जल्दी यहां आओ। तो ये नाद, ये आर्तनाद लक्ष्मण ने भी सुना, सीता ने भी सुना। तो सीता बोला, देखो लक्ष्मण राम का कुछ कुछ होश हो गया होगा, वो तुमको बुला रहा है। लक्ष्मण बोला, देखो राम को कुछ करने वाला कोई नहीं है यहां, ये उस मायावी का ही छल होगा। पर सीता उसको जबरदस्त लक्ष्मण को भेजा, और जब वहां कोई नहीं था, तब रावण एक सन्यासी के रूप लेकर वहां आकर भिक्ष मांगकर सीता भीख मांगा मांग मांगने का छल करके सीता को हरण कर लिया। रावण का एक रथ था जो पुष्पक रथ, जो गगन मार्ग में आकाश मार्ग में जो उड़ सकता था, एक एरोप्लेन था उसका। असल में वो था कुबेर का, पर रावण ने कुबेर को पराजित करके उससे यह छीन लिया था पुष्पक रथ। तब सीता को जब वो जा रहा था तब पंछियों का राजा जटायु देखा कि सीता को चुरा कर रावण जा रहा है। तो जटायु ने रावण को आक्रमण किया, जटायु के साथ रावण का लड़ाई हुआ, और अंत में जटायु का पंच रावण ने काट दिया और जटायु गिर गए जमीन पर। राम और लक्ष्मण जब वापस आया तो देखा सीता नहीं है। वो दोनों ने सीता देवी को ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते जटायु को पास आया और देखा कि जटायु ने रामचंद्र को बताया कि रावण ने सीता को चुरा कर ले गया है। वैसे सीता को ढूंढते हुए रामचंद्र के साथ हनुमान और सुग्रीव आदि बंदरों को साक्षात हुआ, मुलाकात हुआ। और ये बंदर भी कोई साधारण बंदर नहीं था। देवताओं ने जब भगवान इस पृथ्वी पर लीला विलास करते हैं तब देवताओं ने आकर उनके कभी कभी सहयोग देने के लिए आते हैं। ये हनुमान कौन था? हनुमान था पवन देव का, वायु का पुत्र, और बाली और सुग्रीव, बाली था इंद्र, सुग्रीव था सूर्यदेव। ये सब ऐसे आकर रामचंद्र का लीला में सहयोग देने के लिए आए थे। तो बंदरों को लेकर रामचंद्र अपना सेना बनाया, अपना आर्मी सेना वाहिनी बनाया। रावण का जो राज था वो था समुद्र के बीच, लंका श्रीलंका में। तो रामचंद्र ने वहां जाने के लिए सेतु बनाया, एक ब्रिज बनाया। वो ब्रिज भी कैसे बना, उन्होंने जो कुछ राम का नाम लेकर उस समुद्र में फेंकते थे, पत्थर या जो कुछ फेंक रहे थे, वो सब भासने लगा। दे स्टार्टेड टू फ्लोट, डूबा नहीं, जल के ऊपर भाषमान हुआ। ऐसे एक सेतु बनाया, जो सेतु का अंश अब भी हम देखते हैं दक्षिण भारत में, सेतु बंध रामेश्वरम स्थान अभी भी है, और वो समुद्र की कुछ दूर तक ये सेतु हम देखते हैं। रावण का जो सेना वाहिनी था वो सबसे एडवांस था, बहुत एडवांस था। जैसा कि रावण स्वर्गों के देवताओं के साथ भी लड़ाई करता था, और उसके पास जो अस्त्र था वो देवताओं के साथ लड़ाई करने के लायक था। रावण केवल देवताओं के स्वर्गलोक के देवताओं के साथ लड़ाई ही नहीं करते थे, उनको पराजित भी कर चुके थे। रावण का पुत्र मेघनाद इंद्र को हराया था, इसलिए उसका नाम था इंद्रजीत। इतना पराक्रमशाली था वो रावण। और रामचंद्र के पक्ष में क्या था, रामचंद्र के पक्ष में केवल था बंदर सेना, और उनका अस्त्र क्या था, पत्थर या वृक्ष लकड़ी, इससे उन्होंने लड़ाई कर रहा था। पर अंत में किसका जय हुआ, रामचंद्र का जय हुआ। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है, हम जब भगवान के पक्ष लेते हैं, चाहे वो कितना ही दुर्बल मालूम ना हो, कितना ही बलहीन मालूम ना हो, भगवान का जय अवश्य ही होगा। भगवान को कोई हरा सकता है, नहीं। जो सारे संसार के सृष्टि करने वाला है, जो सारे संसार को पालन करने वाला है, उनको कोई कौन हरा सकता है। तो चाहे वो भगवान एक वनवासी के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, उनके अगर हम पक्ष लेते हैं तो भगवान का जब विजय होता है तो हमारा भी विजय होगा। रावण का सेना वाहिनी का क्या, आप अब सोचिए, कोई बंदरों ने के साथ अगर भारतीय सेना वाहिनी का कोई संघर्ष हुआ, इसमें जय किसका होगा, हमको मालूम अच्छा तरह मालूम है कि भारतीय सेना का होगा, क्योंकि उसके पास राइफल हैं, उसके पास कमान है, उसके पास रॉकेट हैं, उसके पास प्लेन हैं, फाइटर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, और बंदरों के पास क्या है, कुछ नहीं है। परंतु जब रामचंद्र जब रावण के साथ लड़ाई कर रहा था, ये हमको याद रखना चाहिए कि रावण का सेनावाहिनी जो था वो भारतीय क्या, अमेरिकन सेनावाहिनी क्या, सारा पृथ्वी का सारे सेनावाहिनी इकट्ठा करके जितना पराक्रमशाली हो सकता है उससे भी बहुत गुण अधिक पराक्रमशाली था। जैसे हम लोग ये जो भारतीय या अमेरिकन सेना या चीनी सेना है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर सकता है, पर वो क्या देवताओं के साथ लड़ाई कर सकेगा? नहीं। परंतु रावण ने देवताओं के साथ लड़ाई करके उनको हराया था, तो आप सोचिए उसका सेनावाहिनी कितना शक्तिशाली था, उसका अस्त्र कैसी थी, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परंतु रामचंद्र का जो सेनानी थे वो था केवल बंदर, और उसका जो अस्त्र था वो क्या था? पत्थर और लकड़ी वगैरह, वृक्ष। परंतु जब वो रामचंद्र के पक्ष में लड़ाई कर रहा था, भगवान जो सर्वशक्तिमान है उसकी इच्छा से जो कुछ भी हो सकता है, और वो हुआ भी भगवान का इच्छा से। वो लोग का वो जो पत्थर फेंक रहे थे वो पत्थर नहीं था, वो एक एक वज्र बन गया और उसके आघात से राक्षसों का मृत्यु होने लगा। केवल यही नहीं, दिन की वक्त लड़ाई होते समय बहुत सारे बंदरों का मृत्यु हुआ था, बल्कि दिनांत में जब रामचंद्र ने उनको और देखते थे और उनको पुनर्जीवन लाभ हो रहा था, बंदरों का मृत्यु नहीं हुआ, वो सब जिंदा हो गया रामचंद्र के दृष्टिपात के कारण। तो भगवान के कृपा से ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है। और इससे हमें शिक्षा होता है, मिलता है कि हर समय भगवान के पक्ष में ही रहना चाहिए। और हम सब भारतवासी, हम सब बचपन से ही हम रामायण सुनते हैं, या आजकल तो टीवी में भी आप रामायण देखते हैं, देखे हैं ना। तो रामायण का जो कहे, ये जो है घटना जो है ये सब को पता है। तो ये पता चलने के कारण हमें भली भांति हमें शिक्षा मिलता है कि भगवान का ही पक्ष लेना है। अगर हमको कोई पूछते हैं आप किसका पक्ष लेना चाहते हैं, राम का, रामचंद्र का या रावण का, तो हम सब रामचंद्र का ही पक्ष लेंगे, है ना। रावण का पक्ष कोई लेने वाला है? पर आजकल का समाज इतना गिरा हुआ है कि आजकल ऐसा हो रहा है। मैं सुना एक टीवी सीरियल बन रहा है रावण के ऊपर, तो आजकल रावण का भी चेला बन रहा है। मतलब ये समाज में असुरिक भाव का उन्मेष हो रहा है। पर ये क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कम से कम हमको कैसी भावना होना चाहिए? भगवान को अनुयायी होना चाहिए, भगवान को पक्ष लेना चाहिए या भगवान के विपक्ष जाना चाहिए? तो ऐसे भगवान इस भौतिक जगत में आकर हमें शिक्षा देते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही काम जब करते हैं, मतलब जब हम भगवान को पक्ष लेते हैं, तो क्या होता है? हमारा लाभ होता है, हमारा विजय होता है, हमें सब कुछ प्राप्ति होता है। और जब हम भगवान के विपक्ष लेते हैं तो हम सब कुछ खो बैठते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम खोना चाहते हैं या लाभ उठाना चाहते हैं? जो लाभ उठाना चाहते हैं सही रूप से, उनके लिए भगवान का पक्ष ही लेना चाहिए। रामचंद्र का लीला में और एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। जब रामचंद्र ने सीता को उद्धार करके अयोध्या में वापस आया, तब एक दिन रामचंद्र ने, जब रात को जाकर देखते थे उनका राज्य में उनका प्रजा का स्थिति कैसा है, उनकी मनोभाव कैसा है, तब रामचंद्र ने सुना एक जगह एक धोबी उसका पत्नी को कह रहा था कि मतलब सीता देवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कुछ बोला। सीता देवी का चरित्र में कुछ कलंक दिया था। तब रामचंद्र ने इस कारण सीता देवी का निर्वासन, मतलब सीता देवी को दूर भेज दिए थे, वनवास में भेज दिए थे। क्यों? क्योंकि रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने ऐसी मर्यादा स्थापन करना किए थे कि सबको पता चले आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए। ऐसे श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा का, आदर्श पुत्र का और आदर्श नेता का दृष्टांत स्थापन किए थे। रामायण के माध्यम हमें भलीभांति शिक्षा मिलता है कि किस रूप से हमें कार्य करना चाहिए, कैसा कार्य करना चाहिए और कैसी कार्य नहीं करना चाहिए। अब कुछ समय के लिए मैं आपको पूछूंगा, अगर कोई किसी को प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? ये माइक लीजिए।
रावण के कितने पुत्र थे?
हाँ,
और कितनी बीवियां थी? रावण के पुत्र कितने थे?
रावण का काफी पुत्र था, उनमें से प्रधान था इंद्रजीत, मेघनाद और ऐसे काफी पुत्र था रावण का।
हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, इन थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर इन द सोसाइटी,
हाँ,
हु आर डेली रीडिंग रामायण एंड डूइंग इट्स रीडिंग, but still the change in consciousness or the hurt, change of hurt is not taking place.
This consciousness is?
Change in consciousness or the change of the attitude of the people is not taking place.
The consciousness is not changing.
Yes, they are. What is the defect in the today's
society? See, what others are doing is not important. The important is what you are going to do. Right? If others are not acting in the right way, how does it matter? You do the right thing. Yes. Now tell me, after reading Ramayana, what are you going to do? You become a devotee of Ramchandra? Do you become a devotee of the Lord? So you become the perfect example for them. All right? That's the best thing to do. Otherwise, you know, you may tell them, you may talk to them, you may speak to them, you may try to direct them, but they may not listen. But when they see that you are exemplary in your activities and in your behavior, then they will take you seriously.
Hare Krishna. पतित पवन गुरु महाराज के चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम। मेरा सवाल यह है, जिस तरह राम ने राक्षसों को वध करके धर्म राज्य को स्थापन किया था, उसी तरह हम सभी को दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए क्या, ये पृथ्वी में है जितना नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार करूंगा महाप्रभु का नाम।
ओके,
सभी को।
हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है, आप करना, ये शिक्षा लेना चाहिए। हाँ, रावण जैसा असुरों को, राक्षसों को रामचंद्र और उनके अनुजाई ने संहार किया। हाँ, कितना कठिन काम था, पर भगवान के पक्ष लेने के कारण उन्होंने किए थे। तो आप भी अगर भगवान का पक्ष लेंगे तो भगवान का जो कार्य है सारा दुनिया भर, हाँ, भगवान का नाम की प्रचार करना, वो भी आप कर सकेंगे, जरूर होगा। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण।
देयर इज वन बॉय।
हरे कृष्ण, जो चारों युग बदले इसमें कुछ प्रलय आया होगा, तो फिर इतिहास लिखा कैसे गया? जो चारों युग बदलते हैं तो उसके उसमें कुछ हुआ होगा बदलते समय, तो वो इतिहास वापस लिखा कैसे गया?
चारों युग बदलता है। हाँ, अच्छा, उसके पश्चात आप क्या बोला?
उसके पश्चात इतिहास वापस लिखा कैसे गया?
वापस
इतिहास कैसे लिखा गया?
इतिहास कैसे निकलेगा, मतलब
प्रलय के समय जो इतिहास?
ओ, प्रलय, हाँ प्रलय होता है, पर सब प्रलय में सबका मृत्यु नहीं होता है, और वेद जो है उसको प्रलय में उसका नष्ट नहीं होता है। भगवान वेद को रक्षा करते हैं, और वेद को मानने वाला जो भगवान जो भक्त लोग हैं उनको भी भगवान रक्षा करते हैं। हाँ, और इतिहास, ये जो घटनाएं हैं जैसे महाभारत, हाँ, महाभारत इस पृथ्वी में है, महाभारत मतलब महाभारत की इतिहास गंधर्व लोक में है और स्वर्ग लोक में भी है। पृथ्वी का जो महाभारत, इसमें 10,000 श्लोक हैं, और स्वर्गलोक का जो महाभारत है उसमें 1,000 श्लोक हैं। मतलब स्वर्गलोक का महाभारत और भी विस्तृत है, और भी विशाल है, 10 गुना विशाल है। तो इस पृथ्वी का नाश हो सकता है, पर वहां स्वर्गलोक में ये रह जाता है। और ऐसे स्मृति में रह, ये जो पहले जो था, या शास्त्र का जो लिखने का जो तरीका, वो केवल कलियुग से शुरू हुआ है। इस युग में लगभग 5,000 साल पहले ही शुरू हुआ था, इसके पहले लिखने का प्रचलन नहीं था, क्योंकि सब अपना स्मृति में उसको रख लेते थे। इसलिए वेद का और एक नाम क्या है? स्मृति। स्मृति और श्रुति, श्रुति और स्मृति।
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद माम।
हरे कृष्ण
महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि आज के समाज में, जैसे कि हम जानते हैं कि हनुमान जी रामचंद्र जी बहुत बड़े भक्त थे, तो आज के समाज में रामचंद्र जी ज्यादा हनुमान जी की सेवा करी जाती है, और हमारे इस इस्कॉन में भी हम भक्तों की सेवा करते हैं, और भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या हनुमान जी की सेवा के द्वारा हम रामचंद्र जी को प्रसन्न कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम रामचंद्र जी को?
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान के सेवा भगवान के भक्त के माध्यम ही होता है। भगवान बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि मेरा वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरा भक्त का भक्त है वो मेरा सही भक्त है। हाँ, तो वैसे रामचंद्र के भक्त भक्ति जब हनुमान जी के भक्ति के माध्यम होता है, हनुमान जी के प्रति भक्ति के माध्यम होता है, तब रामचंद्र और अधिक प्रसन्न होते हैं। हाँ, और उस भक्ति का फल और अधिक होता है। हाँ, तो वैसे डायरेक्ट रामचंद्र के भक्त बनने के बजाय हनुमान के भक्त बनना ही चाहिए। ठीक है, गिव इट टू हिम, या गिव इट टू हिम. लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक द डेटी ग्रीटिंग्स विल बी एट 9:15. ओके, सो वी हैव 15 मिनट.
हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम. मेरा प्रश्न ये है कि महाराज, आपने जैसा आपने कहा अभी लेक्चर में कि हमें हमेशा भगवान का पक्ष लेना चाहिए, लेकिन जो रावण का भाई था विभीषण, उसने भगवान का पक्ष लिया, लेकिन उसे घर का भेदी कहा जाता है. ऐसा
भगवान को पक्ष लिया तो
फिर भी उसे घर का भेदी कहा, उसे घर का भेदी कहा जाता है. माने विभीषण को घर का भेदी कहा जाता है.
घर का
भेदी?
ओ अच्छा, घर का भेदी, घर का शत्रु,
शत्रु कहा जाता है.
कौन कौन सोचता था कि वो घर का शत्रु था? किस घर का? रावण का घर का.
रावण
तो रावण का घर का शत्रु बनना अच्छा है ना. अगर राक्षस का शत्रु बन के भगवान का मित्र ले होता है तो वह तो अच्छा ही बात है. उसमें क्या हर्जा क्या है?
हमें हमेशा भगवान का पक्ष लेना चाहिए फिर.
हाँ, हमेशा हाँ भगवान का ही पक्ष लेना है और असुरों का पक्ष त्यागना चाहिए. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा, लास्ट प्रश्न करना चाहता हूँ. ये अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पता लग सकता है अपने को? ये भगवान ने अपने को या पृथ्वी पे जो भेजा है तो किस लिए भेजा है, ये कैसे पता लग सकता है?
किस लिए भेजा है ये शास्त्र ग्रंथ पढ़ के उसको पता लगाना चाहिए किस लिए भेजा है. भेजा है देखिए, केवल एक काम के लिए भेजा है. नौकर का काम क्या होता है?
अपने मालिक की सेवा.
मालिक का सेवा. तो हम कौन है?
नौकर है भगवान.
हम भगवान का नौकर है. मालिक कौन है?
भगवान.
तो हमको क्या करना चाहिए? जोर से बताइए.
भगवान की सेवा करना चाहिए
बस. तो हमको हम केवल एक काम के लिए ही यहाँ आए हैं, भगवान को सेवा करने के लिए ही यहाँ आए हैं.
हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. Should we take some more questions or you have some other program? Okay, so anyway, Hare Krishna, Gaur Premanande, Hare Hare.